Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Shortly hereafter is scheduled an initiation ceremony. No one should take initiation. Initiation is only if you're in Maya would you want to take initiation. So what shall we do? Shall we cancel? Cancel the ceremony? Well, the problem is that we are in Maya. No one should take initiation because no one should be in Maya. Didn't exactly say that. No one should need to take initiation because no one should be in Maya. But we are in this material world and we are in Maya. And we need to get out. How are we going to get out? We need to get some guidance how to do that. And for that we need to take initiation. So everyone should take initiation. Unless there are any Paramahamsas present here, please introduce yourself. Or unless you happen to be God yourself. Bhagavan Swayam, God himself, also takes initiation. There's no need for him to take initiation. But he also accepts a guru. Just to teach us that we need to take initiation. Srila Prabhupada sometimes compared initiation to a contract. This is there are so many contracts in the modern world because it's very complex. But in previous times there were, I'm not talking about spiritual, but material contracts also. It might not be specifically defined. But just like when the king takes the throne, he takes the responsibility to protect the citizens. He can exact taxes from the earners. Yeah, what are we going to do? Everyone keeps on walking in front of this camera. And he can live in opulence, and none of the citizens should resent that.
और हो सकता है जो राजा है ज्यादातर राजपाल जो संभालते हैं बहुत उनके पास धन संपत्ति होती है बहुत अच्छे से रहते हैं पर कोई प्रजा उसके लिए दुख नहीं मनाती जब राजा बहुत अच्छे से रहते हैं
But there's he has a responsibility to protect them
पर उस सब राजपाल की धन संपत्ति उनके पास है उसके लिए उनको उत्तरदायित्व दिया जाता है कि उनको सबका ख्याल रखना है प्रजा
Everyone has to follow their own dharma
हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना चाहिए
It's not written for specific individuals, but it's given for different classes of people. In Tamil, there is a saying, maybe you know it, those of you who are from Tamil background.
तमिल में एक कहावत है और शायद आप में से जो तमिलनाडु से हैं वो लोग शायद तमिल जानते हैं वो शायद जान पाएंगे सुन पाएंगे
that the for good crops you need to have 3 rains in a month do you know this
yes. कहा गया है कि अगर आपको अच्छी फसल चाहिए
you know this
उस वर्ष में कम से कम 3 बार बारिश होनी चाहिए अगर अच्छी फसल चाहिए
तो so one time it falls for the brahmins
तो कहा गया है कि पहली जो बारिश होती है वो फसल की वो होती है ब्राह्मणों के लिए
ब्राह्मणों के लिए एग्जैक्टली आई डिडंट आई शुड हैव सेड इट्स बिकॉज़ द ब्राह्मण्स दे एग्जीक्यूट देयर ड्यूटीज दे चैंट द वैदिक मंत्रस दे फॉलो देयर धर्म प्रॉपर्ली देयरफॉर द रेन्स विल फॉल वन टाइम
तो महाराज ने कहा वास्तविक ये अर्थ है कि जो पहली बारिश किस लिए होती है क्योंकि जो ब्राह्मण जब वो अपने धर्म का पालन अच्छे से करते हैं मंत्रों का उच्चारण करते हैं जो जो उनको नियम बताए हैं अगर वो अच्छे से करें उस जगह के ब्राह्मण तो पहली बारिश उनके कर्तव्य पूर्ण करने की वजह से पहली बारिश होती है
And the second rain is because the king is executing his duties properly.
और दूसरी बारिश तब होती है अगर जो राजा है वो अपना कार्य कर्तव्य अच्छे से करे तो दूसरी बारिश
And the third one is because the women are doing their stri dharma properly.
और तीसरा कहा गया है कि तीसरी बारिश तब होती है अगर जो स्त्री है जो माता है स्त्री अगर वो अपने धर्म का पालन अच्छे से करें तो वह तीसरी बारिश लाती है उस
And nowadays there's no rain in Tamil Nadu.
और आजकल तमिलनाडु में कोई बारिश नहीं हो रही
और if it comes as a cyclone and floods everything.
और कभी कभार बारिश आती है तो ऐसे आती है कि आंधी तूफान और पूरी बाढ़ आ जाती है
So the point is, it's not written in that the king has to sign a contract and put his thumbprint or any such thing, but it's understood. The laws are there in the Dharma Shastras, and it's understood they're expected to follow.
So अर्थ ये है कि कई बार ये जो चीजें हैं, जो धर्म हैं, उसको कहीं लिखा लिख के किसी को उसको कोई अंगूठा या हस्ताक्षर नहीं करते। पर ये समझ में होता है सबको कि अगर हम राजा हैं, तो हमारे को अपना धर्म पालन करना है, जैसे
When you all came to this country, you had to sign an agreement, is it not, with your employer?
जब आप लोग यहाँ पर आए इस देश के अंदर, तो अपना इकामा बनाने के लिए आपको कई जगहों पे कई कई पेजों के ऊपर हस्ताक्षर करना पड़ा था, समझौता लिखना पड़ा था।
You have to do this, 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 and this, and you will get in return this, this, this. Actually, probably it's just money and nothing else. That's all. So much money.
तो समझौते में क्या लिखा हुआ था कि अगर आप 1, 2, 3, 4, 5 ये सारी चीजें हमारे लिए करोगे तो हम आपको थोड़े से केडी देंगे
And each side wants to get the most out of the other.
और उस समझौते में क्या प्रयास करते हैं दोनों लोग जो मालिक है वो प्रयास करता है जो सेवक है उससे कितना माल निकालूं उससे कितना काम निकालूं और सेवक प्रयास करता है कि मालिक से कितना माल निकालूं
Probably if, when you were in India or wherever you came from, when you thought, I'm getting a job in Kuwait, you became very excited. Is it not? There's something very good for me.
हो सकता है कि आप लोग भारत से या जहाँ से भी आप लोग हैं, जब आपने सुना होगा कि मेरे को कुवैत के अंदर नौकरी मिल रही है, तो आप लोग बहुत प्रसन्न हो गए होंगे, बहुत खुश हो गए कि मैं कुवैत जाऊँगा.
Is it like that?
क्या ऐसे किसी का अनुभव हुआ था?
Now, what if you are offered a job in Kuwait for 7 days a week, work 12 hours a day? And at the end of the month, they give you 1 dinar.
अगर आपको कोई आपको ऐसा बताए कि मैं आपको नौकरी देने वाला हूँ कुवैत के अंदर 7 दिन प्रतिदिन 12 घंटे काम करना पड़ेगा पूरे महीने 300 दिन और उसके बाद महीने के अंत में आपको 1 दिनार दूंगा
So would you? Would you accept such a contract?
आप क्या अपनाएंगे वैसा समझौता जिसके लिए काम करने आएंगे?
The idea is that you're going to get more money than you would have had for doing the same amount of work in your own country.
तो यहाँ पे इसलिए आते हैं ज़्यादातर लोग ये सोच के कि जितना काम मैं भारत में करता था उतना काम करके कुवैत में मैं दुगना या तीन गुना बहुत ज़्यादा पैसा कमा लूँगा इस ये सोच लेकर कुवैत जैसी जगह पे आते हैं.
So everyone's trying to get the best job, isn't it?
तो हमने क्या ये सही नहीं है कि ज्यादातर जो जन है सब लोग देखा जाए तो प्रयास ये करते हैं कि मेरे को अच्छी से अच्छी नौकरी मिल जाए.
You took this contract, but if you're offered a job in America paying you 10 times more than you're getting, then you'd like to go and make another contract.
आप यहाँ पे समझौता करते हैं, आपको यहाँ पे एक समान कुछ रकम मिल रही थी, और अगर आपको कल कोई बोले कि हम आपको अमेरिका में जॉब देंगे और 10 गुना रकम देंगे, तो कहाँ जाएंगे? अमेरिका जाएंगे ना?
But even if you got 10 times more, you can be sure that the boss who's employing you has calculated he'll get more out of you than you're doing for him.
But मजे की बात ये है कि आप ये सोच रहे हैं कि मेरा फायदा हो रहा है पर ये व्यक्ति जो आपको आपका मालिक जो आपको 10 गुना अमेरिका में नौकरी देगा पैसे की वो आप ये जान लीजिए वो ये सोच रहा होगा कि आपसे वो 10 गुना और ज्यादा निकालेगा जितना आपको पैसा दे रहा है उससे.
So how is initiation like a contract?
तो अब इस सब को समझते हुए अब ये दीक्षा किस तरह का समझौता है? अगर ये समझौते इस प्रकार के होते हैं तो दीक्षा किस तरह का समझौता होगा?
Well, there are many gurus who are very interested to exploit their disciples.
हम कई बार देखा गया कि कई गुरु जो हैं वो अपने शिष्यों का शोषण करते हैं.
They're called guru, but actually not really guru, but they go by the name of guru.
उनको गुरु के नाम से बुलाया जाता है, वो अपने नाम से गुरु लगाते हैं, पर वो वास्तविक रूप में गुरु नहीं.
बहवो गुरवो सन्ति शिष्यवितापहारका. There are many gurus who are very expert in removing all the money from their disciples.
कई गुरु जो हैं, उनका लक्षण ये होता है कि वो अपने शिष्यों के जितने पैसे हैं, वो अपनी जेब में कर देते हैं. सब लोग अपने मोबाइल फोन बंद कर दीजिए. प्लीज स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन.
So what's the contract in this? What are we doing here? This initiation ceremony. What is the contract?
तो आज जो दीक्षा समारोह होगा उसमें प्रश्न उठ रहा है कि किस प्रकार का समझौता है, किस प्रकार का व्रत, किस प्रकार का है?
You have to vow to follow four regulated principles and chant minimum 16 rounds of the Hare Krishna mantra daily.
तो आपकी तरफ से इस समझौते में लिखा है कि आप हम सबको चार नियमों का पालन करना है और प्रतिदिन कम से कम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है.
It's not written.
लिखा नहीं है.
It's spoken.
ये बोला जाता है.
But it's spoken in the presence of Srila Prabhupada, Shishi Radha Madhava and all the Vaishnavas.
और किनके समक्ष कहा जाता है, बोला जाता है? Srila Prabhupada के समक्ष, Shri Radha Madhava, सब वैष्णव के समक्ष ये प्रण दिया जाता है.
Previously in India there was not this writing that if it was just it was a dispute they would go in front of the deity.
पहले प्राचीन काल में भारत के अंदर कोई चीज लिखित नहीं होती थी. अगर किसी के बीच में समझौता था, कोई दुविधा आती थी, तो कहा जाता था भगवान के सामने, भगवान की अर्चा विग्रह के सामने जाकर साक्षी रखा जाता था.
And no one would dare to break their word.
और भगवान के सामने जाके कभी कोई भी गलती से भी इस प्रकार का गलत शब्द नहीं बोलता था और झूठ नहीं बोलते.
But even that might have not been necessary in ordinary demons.
पर हो सकता है कि सामाजिक स्तर पे, भौतिक स्तर पे जो आपस में लेन देन होता होगा, हो सकता है उसमें शायद कुछ लोग इसके ऊपर काम ठीक से नहीं करते हो.
Even now in maybe not in big cities but if someone says okay I'll sell you this, I don't know, I'll sell you a car and you just pay me $100 every month, if it's in a small town people know each other, there's no need to write a contract, it's just on trust, that's all.
तो बड़े शहरों में नहीं होता है, पर छोटे शहर में जाए हो सकता है कोई व्यक्ति बोलेगा चलो मैं तुमको ये गाड़ी बेच रहा हूँ तो प्रतिदिन प्रति महीने जो है मेरे को 100 रुपया या 1000 रुपया जितना भी आप दोगे, तो वो लिखित में कुछ नहीं करते पर वचन देते हैं और इसका पालन करते हैं क्योंकि छोटा शहर है, सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो कोई नहीं चाहेगा कि उनका अपमान हो।
But I think those days are going away everywhere.
पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो दिन जो है अच्छे दिन अब जा रहे हैं, धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं।
Anyway, the contract is on one side to follow these principles.
तो इस समझौते में एक तरफ जो प्रण है, अब शिष्य का प्रण है कि हम इन नियमों का पालन करेंगे।
But there's a lot more which is not spoken.
पर ऐसी कई चीजें हैं जिनके बारे में बोला नहीं जाता।
It's you're also expected to follow Ekadashi.
जैसे सब शिष्यों को एकादशी व्रत का पालन करना है।
You're expected to study Srila Prabhupada's books, listen to his lectures.
प्रतिदिन या ज्यादातर श्रील प्रभुपाद जी के प्रवचन सुनना, उनकी पुस्तकों का अध्ययन करना।
And over and above all, we are all expected to cultivate the mood of pure devotion.
और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमारे को यह भावना विकसित करनी है अपने हृदय के अंदर, किस प्रकार की भावना, शुद्ध भक्ति की भावना।
Anyabhilashita shunyam jnana kamadyanavritam anukulyena krishnanushilanam bhaktirutama. We're supposed to imbibe the mood or live according to the mood of doing everything not for our own illusory idea of what is good for us, but doing what Krishna wants us to do.
ऐसा जीवन अपनाना है, ऐसी भावना विकसित करनी है अपने हृदय के अंदर कि जिसके अंदर हम लोग अपना जीवन इस प्रकार से नहीं काटते कि मेरे लिए क्या अच्छा है और मेरी इंद्रियों को कैसे सुख मिलेगा, परंतु इस प्रकार से काटते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को कैसे प्रसन्न करें।
So that's the contract from the disciple side. What does he get in return?
तो अगर शिष्यों को इतना सब कुछ करना है तो उसके विपरीत उसको गुरु से क्या मिलेगा?
Well, he's supposed to take teachings from the guru. He has the confidence that he can come to the same point that Arjuna came to after accepting Krishna as his guru. When Arjuna said to Krishna, Nashto moha smriti labdha tvat prasadan maya chuta sthitosmi gata sandeha karishye vachanam tava. Arjuna told Krishna that the illusion that I was in is now gone.
Arjuna Krishna Bhagavan se kaha, ye Bhagavan, ye jo moha tha mere man mein, vah ab chale gaye.
I've regained the memory of what I should be doing. It's all by your mercy, Krishna. You are a chuta who never falls into illusion. Now I'm fixed in my determination. All my doubts are gone.
और मेरे जो संशय थे सब दूर हो गए।
And I will execute your order.
और अब मैं आपने जो मेरे को उपदेश निर्देश दिया उसका मैं पूर्णतः पालन करूंगा।
So we start off in the situation, Karpanya dosho pahatasvabhava prichamitam dharma samudacheta. Yad shriyasya nishchitam bruhitam me shishasteham shadi mantvam papannam. We start off admitting our confusion.
तो हम शुरुआत करते हैं ये समझ कर, ये अपना कर कि हम लोग दुविधा में हैं, हम लोग असमंजस में हैं।
And knowing that we need a guru to be guided.
और ये अपनाते हैं कि हाँ हमारे को बहुत जरूरी है गुरु का मार्गदर्शन लेना।
And we enter into the contract with the confidence that we will come to the point of clear understanding.
और इस समझौते के अंदर हम पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं कि इस समझौते में उतरने से हम लोग के जितने भी संशय से दूर हो जाएंगे और आगे अग्रसर होंगे।
And that we will revive our original consciousness, which is of love of Krishna.
और फिर से हम लोग भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो हमारा अस्तित्व था कृष्ण प्रेम का वो हमें प्राप्त हो जाएगा.
And we will go back home, back to Godhead.
और हम वापस भगवान जा पाएंगे.
So 16 rounds, 4 regulative principles. Do this and you get this. That's the concept.
16 माला का जप करिए कम से कम और 4 नियमों का पालन करिए तो आपको ये सब मिलेगा.
What does the guru get?
इसमें से गुरु को क्या मिलेगा?
He gets a little dakshina here and there. He gets a little dakshina.
थोड़ी बहुत दक्षिणा मिल जाती है.
And he gets all your sins. It's all your sinful reactions.
और दक्षिणा और आप सबके जितने पाप जो गुरु को क्या मिलता है दक्षिणा और जितने पाप हैं जीव के जो शिष्य के सारे पाप उनको लेने पड़ते हैं.
If he was someone who wanted to get money from you, then he shouldn't be a guru.
अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी दक्षिणा के पीछे आपको दीक्षा दे रहे हैं तो उनको गुरु नहीं बनना चाहिए.
Why does he do it?
तो वो क्यों करते हैं ऐसा?
Well, he does it because his guru did it for him.
जब इतनी प्रभाव सबके पाप लेने तो ऐसा क्यों करते हैं? हमारे पिता इसीलिए करते हैं क्योंकि उनके गुरु ने उनको ये करा, उनके लिए ये करा था.
And in parampara, the order comes: what you got, you have to give.
और परंपरा में आदेश है कि जो आपको मिला अपने गुरु से, वह आपको आगे देना है.
This is Chaitanya Mahaprabhu's order coming in disciplic succession. When the devotees, they got the inspiration of Krishna consciousness from Chaitanya Mahaprabhu, he would say to them, Jare dekho tare kaha Krishna upadesh. Amar agyai guru hoya taro edesh. Chaitanya Mahaprabhu would give the instructions of Krishna to others and in this way become their guru.
So Mahaprabhu ne kaha ki Bhagwan Shri Krishna ke bare mein unka upadesh jo baaki sabko dijiye, unko bataiye.
No. Chaitanya Mahaprabhu would instruct them. In the instruction, he would give them the instructions of Krishna, and in this way, he would become their guru.
Bhagavan Chaitanya Mahaprabhu apne shishyon ko apne paashon ko jab updesh dete the Krishna Bhavanamrita ke bare mein, to is prakar se Chaitanya Mahaprabhu unke guru bane.
And he would tell them that what instructions you got about Krishna, you tell others.
Aur unhone phir Mahaprabhu ne unko kaha. अब जो मैंने आपको उपदेश दिया है गुरु बनकर वो उपदेश आप आगे और जन को दीजिए.
In this way you also become a guru and deliver others.
और इस प्रकार से फिर तुम भी गुरु बन जाओ और बाकी लोगों का उद्धार करो.
So this instruction is coming in disciplic succession.
So ये आदेश निर्देश गुरु परंपरा के द्वारा आ रहा है.
It is the duty of every disciple to share with others what he has received. This is the best contract, the contract to be Krishna conscious. But one can be a guru, one can be a disciple in so many different kinds of gurus.
पर हम लोग जो है अलग शिष्य बन सकते हैं अलग अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार के गुरु.
You can, if you want to learn wrestling, you have to have a wrestling guru.
अगर आपको कुश्ती सीखना चाहते हैं तो आपको द्वंद्व कुश्ती के लिए ऐसा गुरु देखना पड़ेगा जो द्वंद्व कुश्ती करते हैं.
If you want to learn cooking, you have to have a cooking guru.
अगर आप लोग प्रसाद बनाने की विधि जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऐसे व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा.
The little girls, they start at 4 years old, something like that. They don't. From their mother, who's the first guru.
तो जैसे पहले सीखने के लिए रसोई सीखने के लिए क्या होता छोटे छोटे बच्चे 4 वर्ष की उम्र से माता के द्वारा माताओं की गुरु होती थी वो सीख जाते थे.
And in this way, all the arts and sciences come down by parampara.
तो इस प्रकार से जितने भी विभिन्न प्रकार के विज्ञान और शैलियां हैं वो परंपरा के द्वारा आगे पहुंचती थी.
We maybe visit someone, a guest in their house, and the cooking is very nice.
हो सकता है हम कभी किसी के घर में जाएं और उनके अतिथि बनकर और हमें दिखता है कि उनका रसोई जो बनाया उन्होंने प्रसाद बनाया बहुत अच्छा था.
So we don't ask, how did you learn to cook so nicely?
तो हम ये नहीं पूछते कि आपने इतना अच्छा खाना बनाना कैसे सीखा.
We know she must have learned from her mother. That's the way it goes on, generation after generation.
क्योंकि हमें पता है कि उस स्त्री ने या उस माता ने कहाँ से सीखा होगा, अपनी माँ से सीखा होगा, और इसी प्रकार से पद्धति आगे बढ़ती है.
And of course, among devotees, there's another special secret.
और पर भक्तों के बीच में एक और रहस्य है.
It's called Radharani's mercy.
वह है श्रीमती राधा रानी की कृपा.
Because if we have to cook for Krishna, then Radharani is going to be there and say, "You're going to cook for Krishna. I'd better be there too to make sure it's good."
If you want to cook for Krishna, then you have to be there to make sure it's good. Radharani will be there because if you want to cook for Krishna, then you have to be there.
So if we're sincere to cook nicely for Krishna, then Radharani will help us.
So if we're sincere दृढ़ निश्चय है कि हमारे को बहुत अच्छे से भगवान श्री कृष्ण के लिए वो बनाना है तो श्रीमती राधा रानी हमारा वचन देखकर आईं.
So in the same way we may think, who is some person to be a representative of God and say they're going to give love of God and all this kind of thing.
कई बार हमारे मन में प्रश्न आ सकता है कि ऐसा कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है जो कह रहा है कि मैं भगवान का प्रतिनिधि हूँ और मैं भगवान भगवत प्रेम भगवान का प्रेम वितरित करूंगा.
Who can cook for Krishna? Radharani can cook for Krishna. So what are we going to do? How can we cook for Krishna when he's got Radharani cooking for him? We can only do so by praying for the mercy of Radharani, and if she's pleased, she will enter into our mind and our hearts and our hands and make us suitable, qualified for cooking for
Krishna.
So, how can anyone teach others about Krishna?
तो कोई भी जन भगवान श्री कृष्ण के बारे में किसी को कैसे बता पा सकते हैं?
It's the same principle.
वही तत्व है.
That if we sincerely try to serve Krishna by cooking for him, by speaking for him, by guiding others for him, then he will help us.
अगर हम लोग स्वच्छ दिल से दृढ़ता पूर्वक अगर भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं कि उनके बारे में बोलने के लिए उनके बारे में सिखाने के लिए तो वही तत्व जो महाराज ने बताया रसोई वाला वही तत्व इस पे भी अर्पित हो जाता आ जाता है.
How did your mother learn to cook so nicely?
आपकी माँ ने इतना अच्छा बनाना कैसे सीखा? आपकी सबको माँ की रसोई अच्छी लगती है तो आपकी माँ ने कैसे सीखा अच्छे से बनाना? भगवान
She learned from her mother.
उन्होंने अपनी माँ से सीखा था.
And then from the mother, you learn, but there's also your own intelligence is there.
तो आप माँ से सीखते हैं और आपको भी बुद्धि है आप उसका भी प्रयोग करते हैं.
And you know what to do. You have to cut this vegetable like this and fry it like this with these spices, put this amount of salt. You don't think about it, you just do it.
तो जब क्या बुद्धि का प्रयोग ऐसा कि आप लोग जानते हैं समझ जाते हैं कि अच्छा सब्जी को ऐसे काटना है उसके अंदर ये मसाला डालना है ये मिर्ची डालना है इस प्रकार से सब आता है अपने मन में आता है.
In the modern cookbooks they say you measure this much salt, this amount, but in the traditional, you don't measure anything. You just look at it and put it in, and it comes out perfectly every time.
आजकल क्या है? आजकल पुस्तकें मिलती हैं, उसके अंदर लिखा होता है एक चम्मच ये डालो, आधा चम्मच ये डालो, पौना चम्मच ये डालो. तो पहले ये सब नहीं होता था कि लिखे नहीं होता था ऐसे बनाना है. बस बुद्धि होती थी, आशीर्वाद होता तो डाल दो बस अपने आप बन जाता था अच्छे से सब कुछ.
Because you're doing it in the same way. That you've seen it done, and Krishna is giving you the intelligence to do it properly.
क्योंकि आप कैसे कर रहे थे, आप कैसे करते हैं उसी प्रकार से जैसे आपने देखा था अपनी माँ से करते हुए, और भगवान भी आपको स्मृति देते हैं, बुद्धि देते हैं.
So just like we're talking about Tamil Nadu, what are famous favorite preparations in Tamil Nadu? Idli, dosa.
तो तमिल नाडु की हम लोग बात कर रहे हैं, तमिल नाडु में कौन कौन से अच्छे व्यंजन हैं जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं? इडली डोसा काफी प्रसिद्ध है.
Then there's sambar and kurma, so many things.
Sambar hai, kurma hai, alag-alag cheeze.
So that can be prepared very nicely, and it's the same way that was prepared 1,000 years ago.
Ab wo bahut acche se jo banta hai aajkal, agar aap soche to wo hi hai.
Is it? I'm asking.
To Maharaj pooch rahe hain ki kya wo aisa nahi hai aaj ka idli sambar sambar jo aaj se hazar varsh pehle bhi utna hi acha banta tha, hai na?
If we think, let's do something new, let's put 3 times the amount of salt.
अगर हम लोग अपनी बुद्धि लगा के बोले कि नहीं, मैं आज जो मैं थोड़ा बदल देता हूँ, 3 गुना नमक और डाल देता हूँ उसके अंदर.
Salt gives nice flavor. Let's put 3 times more.
क्योंकि नमक से इतना अच्छा स्वाद आता है, इतना अच्छा नमक है, चलो 3 गुना डाल देता हूँ.
Then what happens?
तो क्या होगा?
Sakale neha mahata yoga nashta paramparā. The parampara is broken. And probably your marriage will get broken too. Who's going to want to eat? Or maybe you read that salt is very bad for health. Okay, stop the salt. No more salt.
आप बोले कि नमक बहुत खराब है शरीर के लिए, कोई अब नमक नहीं डाल रहे.
They got it worked out. It was worked out a long, long time ago.
तो ये जो पद्धतियां हैं और जो नियम हैं, ये बहुत हजारों वर्ष पहले इसको निर्धारित कर दिया गया था इन सब चीजों.
श्री रामानुजाचार्य, he gave exactly how all these sabjis should be cooked in different seasons, different times of day, exactly.
श्री रामानुजाचार्य ने स्वयं लिख के बताया कि किस प्रकार से कौन सी सब्जी कौन से मास में किस प्रकार से क्या उसकी पद्धति बनाने की, उन्होंने सब समझाया अपने शिष्यों को.
Every garland for every deity at every time of year, every festival, exactly which flowers in which order they should go, it's being followed up to the present day.
प्रत्येक माला के अंदर भी बताया था उन्होंने, प्रत्येक माला हर महीने में हर दिन में भगवान की कौन सी विग्रह को कौन सी माला कौन से महीने में और उस माला के अंदर कौन से फूल होने चाहिए और वो फूल किस क्रम में आने चाहिए, इस डिटेल तक इस विश्लेषण तक बताया गया, लिखे बताया उनको बताया गया और उसका आज भी पालन हो रहा है.
And it's still going on.
और अभी भी चल रहा है वो पद्धति.
And it's perfect.
और वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई त्रुटि नहीं.
We know it's perfect.
हम कैसे जानते हैं कि बिल्कुल संपूर्ण है?
Because Sri Ramanujacharya gave that system.
क्योंकि वह रामानुजाचार्य जी ने यह पद्धति बताई.
And he knows how to please Krishna.
क्योंकि उन्हें मालूम है भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कैसे करना है.
Krishna is very satisfied.
और कृष्ण बहुत संतुष्ट है.
And there are people up to the present day who only brahmacharis are allowed to make those malas, actually. In other places we expect the women to do, but in Sri Ranga only brahmacharis can do.
Well,
at least in Sri Ranga. I'm not sure about other places, but at least in Sri
Ranga. वो है जो मालाएं हैं भगवान की जिसके बारे में वर्णन करा गया, वो केवल ब्रह्मचारी ही बना सकते हैं. हो सकता है अलग जगह पे माताएं करती हूँ, पर वहाँ पे केवल ब्रह्मचारी ही मालाएं बनाते हैं.
Mostly the temple services everywhere would be done by the men, and in the home the deities would be served by the women.
ज्यादातर प्रांतों में
शालग्राम
कि मंदिर के अंदर सेवा पुरुष करते थे, भक्त करते थे, और घर के अंदर जो विग्रह होती थी उनके घरों में वह माताएं उनकी सेवा करती थी.
So there are brahmacharis up to the present day who very enthusiastically give their whole life for making these garlands. And they do it every day, and every day they're very enthusiastic like this.
So aaj ke din tak sachi brahmachari hain jo itne utsahit rehte hain aur unki pura jeevan nikal jata hai isliye keval bhagwan pratidin wo kya karte hain seva, wo bhagwan ki wo mala banate hain jaisa unko Ramanujacharya ji ne.
And they come from a certain caste, probably the Mali caste, I'm not sure.
और वह केवल एक ही कास्ट से एक ही उससे आते हैं जाति से आते हैं माली शायद माली जाति से आते हैं
It's not only the Brahmins who get to do everything.
ऐसा नहीं है कि उनको ब्राह्मण होना है ये नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण को ही अवसर मिलता है वहां पे भगवान की सेवा करने का माली माली जाति वाले जो है वो ही भगवान के लिए वहां पर अवसर मिलता है
Just like there's a festival and the Lord is called carried on different vahanas, different carriers.
जब उत्सव होता है तो भगवान को अलग 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 अलग
वाहन is the
वाहन के ऊपर भगवान को लेके जाया जाता है
And there are certain castes, Shudra caste, they can carry.
Or kahi Shudra jati.
Not Brahmins. The Brahmins will do the arati for the Lord, the Shudras will carry.
Or kahi vahan jo hai, wo keval Shudra jati ke
vahan. Specific jati, not any.
विशेष प्रत्येक एक जाति है शूद्र जाति जिनको निश्चित करा गया वही भगवान के उन वाहनों को लेके जाते हैं भगवान को उठाकर.
So the man who's holding, he knows. My father did this. My grandfather did this.
और जो वह व्यक्ति जो ये वाहन उठा रहा है बैठा उसको ये स्मृति है कि मेरे पिता ने इस वाहन को उठाया था भगवान को और मेरे दादा ने भी इस वाहन को उठाया था
Right back to the time of Ramanujacharya. They've been doing
कब तक ऐसे मेरे पिता पर दादा दादा करते करते कहां तक रामानुजाचार्य जी के समय तक हमारी ये जाति जो हमारे परिवार में उन्होंने सेवा करी
And my grandfather passed away 10 years ago, and he's still doing it.
और मेरे जो दादा जिन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, जिनका देहांत हो गया 10 वर्ष पहले, वह आज भी यह सेवा कर रहे हैं.
He does it here. He does it there.
मैं यहाँ कर रहा हूँ और मेरे दादा उधर कर रहे हैं.
So this is the principle of parampara. Don't change anything.
तो ये परंपरा का तत्व है और हमें इसको बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए
Don't change anything. And then, just like the man is carrying, he knows I'm getting the blessing not only of Krishna, not only of Ramanujacharya, but from all in the parampara, all the family members, all the gurus.
इसको बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए और वह भक्त उस प्रकार के भक्त को क्या उनके मन में क्या भावना है उनको मालूम है कि केवल रामानुजाचार्य और भगवान श्री कृष्ण भगवान की मेरे को आशीर्वाद नहीं है मेरे को हमारी जितनी परंपरा थी सारे गुरुओं की परंपरा और मेरे परिवार की जितनी परंपरा थी मेरे दादा परदादा वो पूरा परिवार पूरे गुरु परंपरा उन सबका आशीर्वाद मेरे को मिल रहा है सेवा करके
But if we change something,
तो अगर हम कुछ परिवर्तन कर देंगे
then we lose the blessing. We lose the potency.
और जो शक्ति है, वो दूर चली जाती।
To change means to become a traitor.
परिवर्तन करना मतलब धोखाधड़ी।
That we no longer keep our faith in the previous acharyas.
कि हमने जो अपना विश्वास है, वो पूर्व आचार्य के ऊपर नहीं रखा।
We think now I know something better.
हम ये सोच लेते हैं कि हाँ अब मैं कुछ अच्छा उनसे भी अच्छा मैं जान गया
और I don't care I just don't I don't do it like that
अब मेरे को परवाह नहीं है मैं नहीं करने वाला जो था वो छोड़
Then we lose all the mercy
तो जो भी कृपा थी वो सब हम चली जाती
But if we do the same thing with the faith that it's perfect I don't have to change anything just have to do the same thing then all the blessings come
पर वही सेवा अगर हम पूर्ण विश्वास के साथ करें कि जो मैं कर रहा हूँ वो संपूर्ण है तो जितनी भी कृपा है वो हमारे को प्राप्त होती
All the potency comes.
सारी शक्ति हमारे को मिलती है.
So we just to be a guru in the line of Chaitanya Mahaprabhu, we simply have to speak the same thing.
So Chaitanya Mahaprabhu की परंपरा में गुरु बनने का अर्थ है कि जो महाप्रभु ने कहा वही वचन वही वाक्य हमें बोलने हैं.
What Srila Prabhupada gave, it's the same as his guru gave.
तो Srila Prabhupada जी ने दिया वही दिया जो उनके गुरु ने उनको दिया.
And it's the same as his guru's guru gave.
और उनके जो परम गुरु थे, उनको उनके गुरु से मिला था.
We go all the way up to Krishna. It's the same thing that Krishna gave.
इस प्रकार से देखा जाए, तो यह वह चीज़ है जो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं दी.
So what are we supposed to do?
तो हमें क्या करना है इसके अंदर?
We just give the same thing. That's all.
हमें निमित्त मात्र बनना और वही चीज़ देनी.
Very simple principle.
बहुत सरल है ये तत्व.
And if we think Well, Srila Prabhupada passed away about 40 years ago, and the world has changed so much, we'd better change everything.
पर अगर हम ये सोचने लगे कि देखिए श्रील प्रभुपाद को 40 वर्ष हो गए ये जगह छोड़कर और 40 वर्ष में देखिए जो समाज है ये जो यहाँ पे लोग बहुत बदल गए हैं तो हमारे को बदल देना चाहिए अपना ये सब तर्क
What changed?
क्या बदला?
The birth, death, old age, and disease is going on in full force as ever. Eating, sleeping, mating, and defending is going on the same as ever. Forgetting Krishna is going on the same as ever. You think, oh, it's all new and different now. Now we've got the internet. The internet, what is the discussion? Ahara nidra bhaya maitun, that's all. Eating, sleeping, mating, and defending.
So, internet mein kya charcha hai? Wahi charcha hai na? Ahara nidra bhaya maitun ki. To kya badla?
Maya mukta jiva nahi shrata krishna gyan tatapi jibere kripa koile krishna ved purat. The living beings are bewildered, forgetting Krishna. So Krishna, out of his mercy, what did he do? Did he organize a rock concert? Or did he make a sponsored race? He gave the Vedic knowledge. So people don't know Krishna, so the Vedic knowledge is for giving us knowledge of Krishna.
क्योंकि सामान्य जन भगवान श्री कृष्ण के बारे में हम लोग नहीं जानते इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने बारे में स्मृति दी
सो गुरु गिव्स नॉलेज ऑफ कृष्णा फ्रॉम द शास्त्र
सो गुरु जो है वो भगवान श्री कृष्ण के बारे में ज्ञान देते हैं शास्त्रों के अनुसार
एज रिसीव्ड फ्रॉम हिज गुरु
जैसा उन्होंने प्राप्त करा अपने गुरु से
हाउ कैन यू नो हु इज अ गुरु यू सी इफ ही इज फॉलोइंग हिज गुरु
तो ये कैसे पता चलेगा कि कोई प्रमाणिक गुरु है कि नहीं बड़ा सरल ये देखिए कि वो अपने गुरु के आदेशों का पालन कर रहे हैं
Well, how do you know that his guru is a guru?
तो आपको ये कैसे पता चलेगा उनके गुरु आपके गुरु के गुरु कैसे गुरु हैं?
And then you go all through the system and you find out does it match with what Krishna says because Krishna is the original guru.
तो आपको क्या करना है ऊपर तक जाना आपने देखा कि ये सब जो लोग हैं जो पालन कर रहे हैं गुरु बोल के क्या वह पालन कर रहे हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आदि गुरु
Actually, you'll find in all these Mayavadi sampradayas, these neo-Mayavadi sampradayas, that often the disciple and the guru, they're very different to each other.
आजकल जो नए जो Mayavadi sampradaya हैं, खासकर जो आजकल के वर्तमान समय के जो Mayavadi sampradaya हैं, उसमें आप देखेंगे जो गुरु है और जो उसके शिष्य हैं, वो बहुत ही उनका चालचलन एक दूसरे से अलग रहता है।
It's all different varieties of nonsense they talk. Srila Prabhupada said about the parampara, there may be many branches, but the fruit tastes the same whichever part of the tree you take it from.
Srila Prabhupada ji ne pramanik parampara ke bare mein bataya ki ho sakta hai ki alag alag shakhaye ho us ped ki, par un shakhao ka jo phal hota hai, wo phal ka swad ek hi hai.
So the parampara may have many branches.
तो एक परंपरा की भी कई शाखाएं हो सकती हैं
and the branches might look a little different they're not going to be exactly the same
भारी रूप से देखा जाए तो जो शाखाएं हैं वो अलग अलग हो सकता है दिखेंगी हो सकता है बिल्कुल एक जैसी ना हो
but still you can understand by looking at it that is looking at the leaves or the fruits this is a mango tree or this is a coconut tree they look quite different
पर अगर आप उनके पत्तों को देखेंगे शाखाओं को देखेंगे फल को देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आम का पेड़ है ये नारियल का पेड़ है क्योंकि अलग अलग है ना
एंड फ्रॉम वन ट्री द फ्रूट शुड टेस्ट द सेम
और एक पेड़ से जितने भी फल हैं उन सबका एक जैसा ही स्वाद होना चाहिए
ऑफ कोर्स इन द एकांबरनाथन मंदिर इन country. They have, it's like three trees all in one. That's what you get from Mayavad. So one tree and all different flavors.
आपस में मिले हुए, तो महाराज ने कहा मायावाद में जाओगे तो यही होगा, सब उल्टा सुल्टा, सब आपस में मिलावट।
But the general rule is one tree, same fruit.
पर वैसे जो नियम है कि एक पेड़ का अलग एक फल।
So we should see, Srila Prabhupada, he gave the same message, and his disciples, they gave the same message. It should all be the same.
तो हमें इसका ध्यान रखना है कि श्रीला प्रभुपाद जी ने एक दो नियम बताए, जो उपदेश दिया, उनके शिष्य भी वो उपदेश का पालन करते हैं।
And the guru, they should give the same message, live according to the same message, and then the disciples will get the same message.
और अगर गुरु जो प्रचार करते हैं उसी प्रकार से अपना आचार करें तो शिष्य समझ जाएंगे और वो भी उसका पालन करेंगे।
And in this way, the same benefit we get as Arjuna got from Krishna.
और इस प्रकार की पद्धति से हमारे को वही लाभ मिलेगा जो अर्जुन को मिला था भगवान श्री कृष्ण के उपदेश का पालन करने से।
We have to hear and learn and act.
हमें सुनना है, सीखना है और उस पद्धति के अनुसार अपना जीवन अपनाना, उसको पालन करना है।
Oh, I came up with a new sutra, is it? Oh, that's good, something new.
तो लगता है मैं एक नया सूत्र बना दिया, अच्छा है, कुछ नया।
That's good. New, that sounds dangerous, doesn't
it?
Ah, but we have in Shastra, Shravan Manan Nididhyasana. Means we should hear, consider, not just hear like some sound, but we should think about it, and then we should, Guru Mukha Padma Vakya Chite Te Kariya Aikya Ag, we should make it one with our life.
Naya Agni, agar Shastra mein dekha jaye, ye sutra vaha pe bhi hai, Shravan Mana Nidhi Shastra. Usme Maharaj ne samjhaya ki pehle sunna chahiye, phir uska achhe se chintan karna chahiye, smaran karna chahiye, aur phir usko apnana chahiye.
Oh, Hare Krishna, we should start the ceremony.
Hare Krishna, ab hum log jo hain, Diksha Samaroh ko prarambh karenge.
So you can just explain to those the name will be called and they can come and offer Dandavat to Srila Prabhupada, then to the main altar and then to their guru here. And while you're explaining all that, I'll just go on.